मेरे अभिन्न मित्रों नमस्कार फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग योग कर्मसु कौशलम के बारे में बातें कर रहे हैं। कल कुछ बिंदु मैंने आप सबको दिए थे और मैंने आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि इस पर आप भी अपने ढंग से विचार करें। इस बारे में मैं आपसे महाभारत के एक प्रसंग की चर्चा करने जा रहा हूं। यक्ष प्रश्न शब्द आपने सुना होगा। यक्ष प्रश्न ये मुहावरे के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। यक्ष प्रश्न का मतलब है मुहावरे के रूप में कि ऐसी समस्या या ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर बहुत कठिन हो, उत्तर मिल ही नहीं सकता। अगर मिलेगा भी तो शायद बहुत कठिन उत्तर मिलेगा, यानी कि एक ऐसी समस्या जिसका समाधान संभव नहीं हो, इसे कहा जाता है यक्ष प्रश्न। इसका नाम यक्ष प्रश्न क्यों है? महाभारत में एक छोटा सा प्रसंग है और प्रसंग यह है कि जब पांडव वनवास के दौर से गुजर रहे थे तो एक वन में पहुंचते हैं और सबको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, प्यासे हैं सब। इतने में ही देखते हैं कि दूर एक तालाब दिखाई दे रहा है, तो होता है कि यहां से पानी ला करके प्यास बुझाई जाए। तो सबसे छोटा सहदेव था, तो सहदेव को पानी लेने के लिए उस तालाब पर भेजा जाता है। सहदेव जैसे ही तालाब में अपनी लुटिया डुबोता है, वैसे ही उसे एक आवाज सुनाई पड़ती, आकाश से आती हुई आवाज। दरअसल ये जो आवाज थी ये यक्ष की आवाज थी और यक्ष कहता है कि पानी पीने से पहले तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा, तभी तुम पानी पी सकते हो। सहदेव यक्ष के इस प्रश्न की, या कह लीजिए कि इस हिदायत की अनदेखी करता है। वो पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यहां जो भाई हैं इंतजार कर रहे होते हैं और जब देखते हैं कि सहदेव को इतना वक्त गुजर चुका है तो फिर नकुल जाते हैं और इस तरह से सभी भाई जाते हैं। नकुल गया, नकुल नहीं आ रहा है, अब क्या किया जाए? तो फिर भीम जाता है, भीम भी वहीं रह जाता है क्योंकि यक्ष उसी तरह से कहता है कि पहले तुम्हें मेरे प्रश्न के उत्तर देने होंगे। भीम भी उसकी बात की अनदेखी करता है, भीम की भी मृत्यु हो जाती है। फिर अर्जुन जाते हैं, अर्जुन के साथ भी यही घटना होती है। तो फिर युधिष्ठिर चिंतित होते हैं कि भाई ये क्या बात है, सभी गए और सबके सब वहां रह गए, कोई भी वापस नहीं आ रहा है। तब फिर युधिष्ठिर जाते हैं, युधिष्ठिर को भी यक्ष की वही आवाज सुनाई देती है। और इनफैक्ट सच ये है कि यक्ष बिल्कुल सामने उपस्थित हो जाते हैं युधिष्ठिर के, और फिर वो युधिष्ठिर को बताते हैं कि देखो, मैंने तुम्हारे इन चारों भाइयों से कहा था कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी तुम ये पानी पी सकोगे, अदरवाइज तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, इसीलिए ये चारों मर चुके हैं। यही बात मैं तुमसे कह रहा हूं कि पानी पीने से पहले तुम मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, तब तुम पानी पीना। तो फिर यक्ष प्रश्न करता चला जाता है और बहुत से प्रश्न करता है, मतलब लगभग यूं कह लीजिए कि 50 से अधिक प्रश्न किए हैं। और जो प्रश्न है वो बड़े फिलोसॉफिकल किस्म के प्रश्न है और उसमें कुछ प्रश्न तो इतने खूबसूरत और इतने अच्छे हैं कि मैं उन प्रश्नों को सुनकर और फिर उनके उत्तर पढ़कर एक तरह से रोमांचित हो उठता हूं कि बाप रे क्या उत्तर दिए गए हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न तो खैर बहुत ही फिलोसॉफिकल किस्म के हैं, प्रश्नों से शायद आपको उतना आश्चर्य नहीं होगा जितना आश्चर्य आपको उत्तर सुनकर होगा। तो यक्ष एक एक प्रश्न करता चला जाता है और युधिष्ठिर उसके उत्तर देते चले जाते हैं। युधिष्ठिर सभी प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं, यक्ष संतुष्ट हो जाते हैं और फिर युधिष्ठिर से यक्ष कहता है कि अब तुम्हारा एक भाई जीवित हो सकता है, बताओ मैं किस भाई को जीवित करूं। तो जो युधिष्ठिर है वो कहता है कि सहदेव को जीवित कर दो, या नकुल की बात कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा तो अर्जुन सबसे प्रिय है, सबसे ताकतवर है, तुम अर्जुन को छोड़ करके नकुल सहदेव को जीवित होने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम ये तो हैं जो कुंती के हैं, जो हमारी दूसरी माता है उनके वो दोनों बेटे हैं, तो कुंती माता का तो बेटा मैं जीवित हूं, लेकिन जो दूसरी हमारी माता है उनका भी तो एक बेटा जीवित होना चाहिए। तो इससे जो है यक्ष बहुत प्रसन्न हो जाता है और वो सभी भाइयों को जीवित कर देता है। तो दोस्तों, प्रश्न क्या था? मुझे लगा कि आप सबकी जानकारी के लिए अगर मैं ये प्रसंग सुनाऊं तो कम से कम आपके ज्ञान में, आपकी जानकारी में थोड़ा सा इजाफा होगा। लेकिन मेरा जो मूल मकसद है वो प्रश्न और उसका उत्तर है। यक्ष ने प्रश्न किया था कि धर्म का मार्ग क्या है, धर्म का मार्ग क्या है, यानी कि वो कौन सा रास्ता है जिसके जरिए हम धर्म तक पहुंच सकते हैं, राइट? मालूम है युधिष्ठिर ने कौन सा उत्तर दिया था? और ये चीजें हमारे सामने आती नहीं है, मुझे लगता है कि ये चीजें हमारे सामने आनी चाहिए और गीता में ये बात कही गई है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, दक्षता धर्म का माध्यम है। अनुवाद कर लीजिए, दक्षता धर्म का साधन है, दक्षता धर्म का मार्ग है। यानी कि हम दक्षता के द्वारा, कुशलता के द्वारा, कौशल के द्वारा अपने धर्म को पा सकते हैं। तो जब हमें कुशलता आ जाती है तो हम करते क्या है, किसके लिए कुशलता, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम दक्ष हो गए हैं, उसमें हम कुशल हो गए हैं, और अगर कुशल होकर के अपने कर्म को कर रहे हैं तो इनफैक्ट हम धर्म को ही निभा रहे हैं। कितनी खूबसूरत बात कही गई है दोस्तों। और अब आप इस यक्ष प्रश्न के उत्तर को संजय लीला भंसाली के वक्तव्य से जोड़कर देखें तो आपको सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों, दो दिनों के बाद अब आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब और बातें करेंगे। अब मुझे इजाजत दें, नमस्कार।